ओम शांति। पहले तो दिवाली और नए वर्ष के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नया वर्ष मना रहे हैं तो केवल नया वर्ष मनाएंगे या कुछ करेंगे भी नए साल में? दिए जल रहे हैं या बुझ गए? और कल जिस उमंग उत्साह से सभी डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो डांस भी चल रहा है ना? क्योंकि ज्ञान हमें केवल बाहरी चीजें नहीं सिखाता, अंतर को परिवर्तित करना सिखाता है। और ये जितने भी त्योहार हैं, पर्व हैं, वो वास्तव में अंतर से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुए हैं। इसीलिए आज चूंकि नया साल है, इसीलिए नए साल के साथ कुछ नए संकल्प, कुछ नया पुरुषार्थ। आप सबने अपने अपने लिए प्लान तो किया ही होगा कि नए साल में हमें क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी आज की चर्चा, चूंकि अवसर ऐसा है, तो जरूर ऐसा हम विचार ऐसा था कि कुछ नया सोचें, कुछ नया करें। पहली बात तो ये जो मेरा विचार है, आज बहुत सुंदर एक मैसेज आया था जहां से मेरा विचार चलना शुरू हुआ। मैसेज ये था कि पूरा साल एक डायरी के रूप में आपको प्राप्त हुआ है और इस डायरी का हर एक पेज खाली है, ब्लैंक है। आपके हाथ में कलम है, अब आपको लिखना है कि आप अपने नए साल को, अपने इस पूरे वर्ष को कैसा देखना चाहते हैं। आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। आपके हाथ में है कि आप इसमें क्या सुंदर से सुंदर घटना चाहते हैं, पुरुषार्थ चाहते हैं। तो विचार चला कि कितनी सुंदर बात है ना। यद्यपि ड्रामा फिक्स है, हम जानते हैं, लेकिन इतनी स्वतंत्रता तो हमें अवश्य है कि हम अपनी तरफ से बेहतरीन करें, अपनी तरफ से अच्छा करें। जगदीश भाई साहब हमेशा कहा करते थे कि जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे पहुंचें और हम पीछे मुड़ करके देखें, तो हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने जीवन को वैसा जिया जैसा बाबा हमसे चाहते थे या जैसा हम अपने जीवन को जीना चाहते थे। उस पड़ाव पे पहुंच के हमें निराशा नहीं होनी चाहिए, संकल्प नहीं चलने चाहिए कि अरे मैंने अपने लाइफ को वैसा नहीं जिया जैसा जी सकता था। होता है ना कई बार, अपने सारे दिन को भी हम चेक करें तो कई बार ऐसी घटनाएं होती, अरे ये कर लेता ना तो ज्यादा अच्छा होता, ये बात हो जाती तो और कहीं ज्यादा बेहतर होता। तो ये चीज ना हो, उसके लिए ही इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम क्या करें। तो पहला विचार जो मेरा व्यक्तिगत मुझे लगा कि करना चाहिए कि दीप तो जले ही हैं, लेकिन अब हम अपने आत्म दीप को इस वर्ष जला करके ही रखें। ज्ञान के तीसरे नेत्र का प्रयोग करें इस वर्ष। दोनों नेत्रों से तो हम देखते रहते हैं, देखते आए हैं, देखते रहेंगे, लेकिन बाबा ने जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, इस ज्ञान के नेत्र का हम प्रयोग करें इस वर्ष। और ज्ञान के नेत्र का प्रयोग करने का भाव ये है कि हर चीज को ज्ञान की दृष्टि से हम देखें। ज्ञान क्या कहता है इसके लिए, हमारी अपनी बुद्धि क्या कहती है, हमारा पिछला अनुभव क्या कहता है, ये नहीं, लेकिन ज्ञान क्या कहता है। यदि ब्रह्मा बाबा के पूरे जीवन को हम देखें तो बाबा के ट्रांसफॉर्मेशन का, बाबा के पुरुषार्थ का एक बहुत ही सहज, जो सहज विधि थी वो ये थी कि बाबा हर लौकिक चीज को अलौकिक में परिवर्तित करते थे। हर लौकिक चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखते थे। बाबा ने वृक्ष देखा और ज्ञान की दृष्टि यूज की कि देखो जैसे ये वृक्ष है वैसे ही तुम्हारा कल्प वृक्ष भी कितना सुंदर है। एरोप्लेन देखा बाबा ने उड़ते हुए, भवन का नाम एरोप्लेन रख दिया कि तुम्हारी भी उड़ती कला होनी चाहिए, है ना। गाय को देखा कि वो जुगाली कर रही है, तुरंत कह दिया कि देखो तुम्हें भी तो जुगाली करनी चाहिए। तो यदि बाबा के जीवन को देखें, मम्मा के जीवन को देखें, तो एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है, सहज पुरुषार्थ के कि ज्ञान की दृष्टि को यूज करें। और ये प्रैक्टिस से होता है। यदि मैं अपने सारी दिन को आज को देखूं तो क्या हर व्यक्ति को देखते हुए, हर घटना को देखते हुए ज्ञान को मैंने यूज किया, इस दृष्टि का कितना प्रयोग किया और अपनी इन स्थूल दृष्टि का कितना प्रयोग किया। दिया तो भगवान ने हमें है यूज करने के लिए ना, इसलिए इस वर्ष में हम यही लक्ष्य रखें, ज्ञान की दृष्टि का मुझे प्रयोग करना है। क्योंकि स्थूल दृष्टि से देखने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। क्या क्या दिखाई देती हैं? दूसरों की कमी कमजोरियां दिखाई देंगी यदि इन आंखों से देखेंगे तो, देह दिखाई देगा यदि इन आंखों से देखेंगे तो, पुरानी दुनिया दिखाई देगी, वहां का चमक दमक दिखाई देगा यदि इन आंखों से देखेंगे तो, और यदि तीसरे नेत्र से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? आत्मा दिखाई देगी, सबका भविष्य स्वरूप दिखाई देगा, फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा, अच्छाइयां दिखाई देंगी। जिसको बाबा ने भी कुछ दिन पहले कहा, कोई कैसा भी काला कोयला है, यदि तुम उसे आत्मा देखते हो तो उसका कालापन दूर होता चला जाएगा। तो उसकी बुराई मुझे प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन एक प्रकार से मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। अन्यथा ये होता है कि बुराइयां देखी, वो घर कर गया, मेरा व्यवहार बदल गया, मेरी स्थिति चेंज हो गई, यही होता है ना। क्योंकि हम इन स्थूल नेत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञान के नेत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये संकल्प लिया जाए कि हम ज्ञान के नेत्र का अब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, इस नेत्र से ही देखें, घटनाओं को भी हम इसी दृष्टि से ही देखें, तो ये हो जाएगा ना। अब आज माया के पॉम्प को देखते हुए, संसार की भव्यता को देखते हुए, लोग कहते हैं ना कि संसार कितना आगे चला गया है, और जब बाबा तीसरे नेत्र से देखा करते थे तो कहते थे कि बच्चे ये दुनिया गई की गई है ना। कोई भी दिया बुझने से पहले बहुत जोर से भभकता है, तो ये संसार का भभका जो है वो अंतिम भभका है, अब ये संसार गया की गया। तो अट्रैक्शन नहीं होगा, हमें ये नहीं होगा कि हम भी तो थोड़ा भोग के देखें कैसा है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमारे बाल भी पूरे बचे हुए हैं प्रभु की दया से, सफेद नहीं हुए हैं, तो थोड़ा संसार भोग लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जब सोचते हैं तो ये विचार आता है, नहीं, हम सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, 5000 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं और अब तो वापस चलना है। अब देखेंगे तो नई दुनिया को देखेंगे, भोगेंगे तो नई दुनिया को भोगेंगे, अब देखना है तो बाबा को देखना है। ये ज्ञान की दृष्टि एकदम सहज कर देती है, लेकिन बात वही अभ्यास की। हम जितनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो नेचुरल होता जाता है, और इस नेत्र से देखने से आत्मिक दृष्टि भी नेचुरल होती जाएगी हमारी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साधक हैं, योगी हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण धारणा यही है कि उनकी दृष्टि आत्मिक होनी चाहिए, शारीरिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहां देह पे दृष्टि जाती है वहां तुरंत योग टूट जाता है, नीचे आ जाता है, और जहां आत्मा पे दृष्टि गई। इसीलिए बाबा ने 2-3 बहुत सुंदर महावाक्य कहे हैं, आपके ध्यान में रहे। बाबा ने कहा है, अष्ट की निशानी है उनकी आत्मिक दृष्टि नेचुरल होती है। जो विजयी रत्न है, हम सबका लक्ष्य यही है ना, ना दीपक भाई, विजयी रत्न बनना है ना। बाबा के पास जो आए हैं, हर एक का ध्येय ये है हम टॉप करें, हम विजय माला के दाने बने। बाबा ने कहा है आत्मिक दृष्टि नेचुरल है, वही अष्ट है। और ये भी बाबा ने कहा, जब तुम आत्माओं की आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, तभी संसार की आत्माओं की दृष्टि तुम आत्माओं पर, चमकते हुए सितारों पर जाएगी। और जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, तभी संसार में नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। तो सब चीजें कहां रुकी हुई हैं? क्योंकि हमने ये बंद करके रखा हुआ है। बाबा ने तो जन्म लेते ही हमें दे दिया, लेकिन हमने कभी कभी प्रयोग किया। जैसे कोई अच्छी चीज होती है उसको संभाल के रख देते हैं, अच्छा ड्रेस होगा दिवाली में पहनेंगे, है ना, नए साल में पहनेंगे, या ये त्योहार आएगा तो पहनेंगे, अब भी नहीं पहनेंगे, अभी जो जो पुराना चल रहा है उसी को चलाओ। लेकिन ये तो जितना ज्यादा यूज किया जाएगा उतनी ज्यादा इसमें निखार आएगी, चमक आएगी। जो कपड़े हम लोगों को मिलते हैं ना, बाबता के कपड़े मिलते हैं हर साल यज्ञ से, उसको जितना धोते हैं उतना उसमें निखार आता है, चमक आती है। तो वैसे ही इस दृष्टि को जितना हम यूज करते हैं, ज्ञान को जितना यूज करते हैं, उतना इसमें निखार आता है, चमक आती है और ये सहज होता चला जाता है। तो एक संकल्प नए वर्ष में कि हम अभिज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, ज्ञान की दृष्टि को यूज करेंगे, इस नेत्र से देखेंगे। शंकर जी को देखा है ना आप सबने, हमारे यादगार हैं, हम राज ऋषि हैं, राज योगी हैं, तपस्वी हैं, महातपस्वी। शंकर कोई सूक्ष्मतन में बैठे हुए नहीं है, बाबा ने स्पष्ट किया है, ये हमारे ही तपस्वी स्वरूप का यादगार है। और आपने देखा होगा शंकर जी को तपस्या में रत, तो उनकी दोनों आंखें बंद और ये जो तीसरा नेत्र है ना वो थोड़ा सा खुला हुआ है, हल्का सा, हल्का सा। किस लिए? किस लिए? ज्ञान युक्त दृष्टि से देखने के लिए, है ना। क्योंकि संसार में रहना है तो आंखें तो खुली रहेंगे, लेकिन ये आंखें काम ना करके ये आंख काम करे, ठीक है। तो नए वर्ष में एक संकल्प तो हम ये जरूर करें, ये सचमुच हमारी पुरुषार्थ को भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगा और साथ ही बाबा हमसे जो चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। दूसरी चीज जो नए साल में हम करें वो ये कि कुछ नियम अवश्य बनाएं अपने लिए, कुछ प्रतिज्ञाएं करें, कुछ व्रत करें अपने जीवन के लिए, क्योंकि नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि जीवन में हम एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो नियम बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कायदे में ही फायदा है ना? और दादी जानकी जी सुनाती हैं कि जब से ये जो हमारा थर्ड संडे को जो योग का नियम बना हुआ है, दादी कहती हैं कि जब से 1978 से इसकी शुरुआत हुई, तब से चाहे मैं जमीन में रहूं या आसमान में, मैं जरूर ये योग करती हूं। हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे हम दादा विश्व रतन जी को देखा करते थे, उम्र कितनी भी हो गई थी उनकी, लेकिन फिर भी 4 बजे आकर के योग में बैठ जाया करते थे। दीदी मनमोहनी जी बहुत लंबी यात्रा करके कहीं भी आती थीं, कहीं भी जाती थीं, भले 1 बज गया हो तो भी सुबह आकर के योग में बैठ गए। नियम है ना ये, और इन नियमों में बहुत बल है, ये नियम हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इस नए साल में कुछ नियम अपने लिए जरूर बनाएं। जितने भी लोग हुए हैं संसार में, यदि आप देखें महापुरुषों के जीवन को, उन्होंने अपने जीवन को नियमों में बांधा। हम भी बाबा के बहुत ऊंचे रत्न हैं, संसार की ऐसी आत्माएं हैं जिन पे दृष्टि है, लोगों की दृष्टि है। हम में से एक एक जैसे पूर्वज है ना, हमारी वंशावली है, बहुत बहुत बड़ी वंशावली है जो हमें देखती है, हमें फॉलो करती है। इसलिए इस साल में कुछ नियम जरूर बनाएं अपने लिए। आज किसी से मेरी बात हो रही थी कि नया साल है तो क्या नया करेंगे, तो ऐसा ही उनके साथ बात करते हुए ये बात निकली कि कुछ नियम तो जरूर हो ना नए साल के लिए। नियम क्या हो सकते हैं? जैसे अमृत वेले से लेके मुरली क्लास तक मौन रहना है इस साल, बहुत बहुत बल देता है, बहुत शक्ति देता है। मैं कुछ बता रहा हूं, आप अपने ढंग से अपने नियम बना सकते हैं। भोजन हम कर रहे हैं, यद्यपि माहौल रहता है डाइनिंग हॉल में, सब बातचीत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक शुरुआत की जा सकती है कि भोजन हम कर रहे हैं तो भी हम मौन में रह के बाबा की याद में करें। ये नियम बनाया जा सकता है कि जो हमारी पूरी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, उस दिनचर्या को बहुत ही मुझे स्ट्रांगली पालन करना है, और उसमें भी विशेष करके अमृत वेले और मुरली क्लास को, वो मेरे कभी भी मिस ना हो। तो इस साल के लिए क्या हम एक ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं कि एक दिन के लिए भी 365 डेज में मेरा अमृत वेला, मेरी मुरली क्लास मिस ना हो? क्या ये रिकॉर्ड हम बना सकते हैं एक नियम के तौर पे कि कम से कम डेली मेरा 4 घंटे का योग अवश्य हो, कम से कम। कुछ वर्ष पहले बाबा मिल रहे थे मधुबन वालों से, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 4 घंटे पावरफुल योग डेली जरूर करना है। और देखा गया कि जब बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिया, सभी बहुत पावरफुल योग करने लगे, माहौल ही परिवर्तित हो गया। बाबा ने तब यह भी कहा था कि 8 बार कम से कम 5 स्वरूपों का अभ्यास जरूर करो, और जब तक नहीं कर लेते तब तक सोना नहीं। नियम के रूप में इसे सबने अपनाया और देखा कि कितना सहज हो गया ये करना, और जब नहीं होता था तो रात को जाग के भी ये किया करते थे। तो एक नियम बना लेने से सहज हमारी उन्नति होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उन्नति हो, हम चाहते हैं कि बाबा हमसे प्रसन्न हो, हमारे पुरुषार्थ से प्रसन्न हो, हमें भी एक आत्म संतुष्टि हो, तो हम इन नियमों पे जरूर ध्यान दें। बनाएं ऐसे नियम अपने खुद के लिए कि ये मेरे इस साल के लिए नियम रहेंगे और उसमें दृढ़ता पूर्वक मुझे ही अमल करना है, क्योंकि कौन बनाएगा मेरे लिए नियम। यदि कोई कहे कि तुमको ये करना है तो वो अच्छा नहीं लगता न? और हम करेंगे भी नहीं, कि तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, राइट? अब सभी यहां राजा रानी है ना, बाबा के जो बच्चे हैं सभी राजा हैं, सभी रानियां हैं, तो सबको आदेश देने का वो जो है ना संस्कार वो है, आदेश मानने का संस्कार नहीं है। इसीलिए खुद को नियम में बांधना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी जो जितना अपने आप को नियमों में बांधेंगे वही आगे चल के प्रकृति को अपने बंधन में बांध सकेंगे, आत्माओं को अपने बंधन में बांध सकेंगे। बंधन में बांधना अर्थात उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि संकल्प में एक बहुत सुंदर कहानी आती है, नियम बनाने में या संकल्प लेने में कितना फायदा होता है। एक व्यक्ति था, वो अपने मित्र को अपने गुरु के पास लेके गया। वो उसका जो मित्र था वो गुरुओं आदि को नहीं मानता था, वो बोलता था कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त सोचा कि चलो लेके चलते हैं इसको, कुछ ना कुछ इसका भला तो हो जाएगा। लेके गए गुरुजी के पास। अब गुरुजी ने ज्ञान व्यान सब सुनाया, अब लास्ट में कहा कि भाई कुछ संकल्प लो। अब गुरु लोग कहते तो है ना कि भाई कुछ संकल्प लो, अब यहां से कुछ संकल्प करके जाओ कि भाई ये करना है मुझे। अब उस व्यक्ति को लगा कि अरे कहां आके मैं फंस गया, मुझे कोई संकल्प वंकल्प लेना नहीं है। फिर भी उसने कहा कि चलो अब इतने बड़े महात्मा हैं बोल रहे हैं तो मैं एक ले लेता हूं संकल्प। उसने कहा कि मेरे पड़ोस में एक किसान रहता है जो गंजा है। अब संकल्प ये लिया, जब तक मैं उस गंजे किसान को नहीं देख लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हंसी में ही उसने एक संकल्प ले लिया। अब संकल्प ले लिया, अब रोज का उसका नियम बन गया, जब वो गंजा किसान उसके घर के सामने से निकलता था बस उसने देखा और भोजन कर लेता था, या कभी खुद झांक के देख लेता था उसके गंजे सिर को और उसके बाद भोजन स्वीकार कर लेता था। अब एक दिन ये हुआ कि सुबह सुबह उठ के वो गंजा किसान अपने खेत में चला गया। अब ये व्यक्ति उठा और इधर उधर देखा कि भाई दिखाई नहीं दे रहा है, इंतजार करता रहा कि अब गुजरेगा अब गुजरेगा, झांक के भी देखा लेकिन वो अपने घर में भी नहीं था। अब संकल्प चूंकि बन गया था, नियम बन गया, नियम की बात मैं कह रहा हूं कि नियमों में कितना बल है, कितनी प्राप्ति है। अब ये व्यक्ति उसको ढूंढते ढूंढते देखने के लिए कि है कहां वो गंजा व्यक्ति, उसके खेत में पहुंच गया। अब हुआ ये था कि उस गंजे व्यक्ति ने सुबह हल चलाना था उसको अपने खेत में, हल चलाते चलाते एक मटके से उसका जो हल था वो फंस गया था वहां पे। अब उसने जब खोद के वहां देखा तो एक बहुत बड़ा मटका निकला जिसमें हीरे जवाहरात सब भरे हुए थे। अब वो निकाल के वो किसान वहीं बैठा हुआ था कि भाई अब मैं इसको ले जाऊं कैसे, शाम होने का वो इंतजार कर रहा था ताकि शाम ढले और मैं घर लेके जाऊं, को मुझे देखे नहीं और इसका मैं सारा उपयोग करूं। अब ये व्यक्ति ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया। अब ये मेड़ के नीचे छुपा हुआ था, अब इधर उधर देख रहा था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। अब जैसे उसने सिर उठा के देखा ये पहुंच गया था, तो जैसे उसके गंजे सिर को देखा ये खुशी से चिल्ला उठा कि देख लिया देख लिया देख लिया। अब इसका तो ये था कि हाँ भाई इसके गंजे सिर को मैंने देख लिया, अब जाके मैं खाना खा सकता हूँ। तो जब उसने जोर से चिल्लाया तो उस किसान ने बुलाया उसको, इधर आओ चुप रहो ज्यादा जोर से चिल्लाओ मत। पास गया, बोला देखो ऐसा है भले तुमने देख लिया मुझे लेकिन और किसी को मत कहना क्योंकि ये धन मुझे मिला हुआ है, ऐसा करते हैं इसमें से आधा आधा दोनों बांट लेते हैं, तुम किसी और को मत कहना। आधा आधा हिस्सा उसको प्राप्त हो गया। एक नियम है, ये बोध कथा है, ये हंसी की बात, लेकिन फिर भी नियम ना, यदि हम अपने जीवन में नियमों से अपने आप को बांधते हैं वो सहज हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाता है। बाबा ने जो हमें नियम बना के दिया है, अमृत वेले का, मुरली का, भोजन का हो, या रात को चार्ट लिखने का हो, शाम को सामूहिक रूप से बैठ के योग करने का हो, केवल यदि इतना ही पालन कोई करे ना तो भी जीवन में एक स्थिरता रहती है, बल मिलता रहता है, शक्ति मिलती रहती है। उसके अलावा हम करें वो तो हमारा एक्स्ट्रा है ही, लेकिन ये भी एक नियम है ना जो पूरे संसार में सभी ब्राह्मणों को बल दे रहा है। तो नियम जरूर बनाएंगे, ये आप पे मैं छोड़ता हूं, आप क्या क्या नियम अपने लिए बनाते हैं। मधुबन में आए हैं, संकल्प ये हो, मधुबन में जब हम आते हैं तो बाबा हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे मधुबन से भरपूर होके जाएं, मधुबन से कुछ ऐसा परिवर्तन करके जाएं जो परिवर्तन लोग भी देखें और कहें कि हाँ मधुबन से ये करके आए हैं ये, तो ऐसा कुछ परिवर्तन के लिए नियम जरूर बनाएंगे। और साथ ही प्रतिज्ञा भी कि मुझे अब ये करना ही है, क्योंकि नियम बना लेना एक बात है लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक उसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कभी कहा था कि तुम नियम तो बनाते हो लेकिन नियम टूटते रहते हैं, इसलिए क्या करो, बाबा ने कहा, अमृत वेले जब उठते हो तो अपने उस नियम को, अपने उस प्रतिज्ञा को दोहराओ कि मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा की है, मैंने ये नियम बनाया है, और बाबा के साथ योग युक्त होके उस नियम में, उस प्रतिज्ञा में बल भरो, सस्टेन करो। जैसे होता है ना संसार में भी ये होता है, लोग पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उसमें पानी नहीं डालते हैं तो बेचारा सूख जाता है, तो हम भी नियम या प्रतिज्ञा रूपी जो पौधा लगा रहे हैं आज इस नए साल में, उसे रोज कम से कम एक मास तक सुबह अमृत वेले योग के बाद उसे जल जरूर दें, पक्का हो जाएगा, वो पक्का होगा और उसके बाद वो सहज हो जाएगा, क्योंकि आदतों का की एक प्रकृति है। यदि आप तीन दिन कोई काम नहीं करते हैं, मान लो आप तीन दिन मत उठो, सुबह उठना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं उठते, मान लो आप एक दिन नहीं उठते, दो दिन नहीं उठते, तीन दिन नहीं उठते, चौथे दिन आप उठ ही नहीं पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे। और यही नियम ठीक इसको रिवर्स कर दो, यदि आप दृढ़ता पूर्वक एक दिन उठे, दो दिन उठे, तीन दिन उठे, चौथे दिन आप सो नहीं पाओगे। नियम है ये आदत का, और ये नियम का एक बल है, इसीलिए क्यों ना हम इस सिद्धांत को अपने परिवर्तन में, अपनी उन्नति में यूज करें। प्रतिज्ञाएं कितनी बड़ी बड़ी की है ना लोगों ने, और हमसे बड़ा तो इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। भीष्म पितामह, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा थी कि आजीवन मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। कितनी राजकुमारियां आई होंगी उनके जीवन में, कितने प्रलोभन आए होंगे, लेकिन प्रतिज्ञा ने अडिग रखा उनको। प्रतिज्ञा एक नियम बल देता है। महाराणा प्रताप ने भी प्रतिज्ञा ली ना कि भाई बस अब मैं पत्तल पे खाऊंगा, जमीन में सोऊंगा, बल दिया इसने, और फिर से पूरे ही मतलब जो राजस्थान में जो उनके लोग थे उन्हें एकत्र करने में मदद किया ना, या उनका गायन जो हुआ इसके कारण हुआ। हम भी प्रतिज्ञा पूर्वक अपने नियमों का पालन करेंगे तो दूसरा काम इस नए साल में ये करें, डूज और डोंट्स की लिस्ट जरूर बनाएं। ये करना है और ये नहीं करना है, इसकी लिस्ट बना के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस नए साल में अपने लक्ष्य को हमें रिवाइज जरूर करना है। लक्ष्य को रिवाइज करें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सागर में यदि कोई कश्ती है, कोई नैया है, यदि उसे पता ही ना हो कि कहां जाना है तो इधर उधर थपेड़े खाके वो नष्ट हो जाएगी, कभी उत्तर में जाएगी, कभी दक्षिण में जाएगी, कभी पूर्व में जाएगी, कभी पश्चिम में जाएगी। लक्ष्य यदि उसे पता है कि किस दिशा में जाना है तो वो सतत उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम ब्राह्मणों के लिए कि क्या हमने अपने जीवन का ध्येय निश्चित किया है, ध्येय निर्धारित करना। जब बड़ी दादी जी हम लोगों से मिला करती थीं, जब हम लोग समर्पित हो रहे थे तब, तो दो बातें बहुत विशेष रूप से वो कहा करती थीं। एक बात ये कि लिखो क्यों समर्पित होना चाहते हो, क्या लक्ष्य है तुम्हारा। इतनी बार उन्होंने लिखवाया क्यों समर्पित होना चाहते हो, क्यों समर्पित होना चाहते हो, लक्ष्य क्या है तुम्हारा। उसने एकदम क्लियर कर दिया हमारे विजन को कि हम इसलिए समर्पित होना चाहते हैं। उसने बहुत बल दिया। व्यक्तिगत रूप से यदि मैं कहूं तो यदि मैं थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है कि यदि आगे बढ़ने का अवसर मिला तो लक्ष्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ध्येय होता है ना वो इधर उधर नहीं देखता, जिसको दादी जानकी जी अपनी भाषा में कहती हैं कि ना वो कहीं अटकता है, ना कहीं लटकता है, ना कहीं चटकता है, ना कहीं भटकता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति लटक जाता है, आपने देखा होगा, लटकता भी है, चटकता भी है, भटकता भी है, फिर से भटक के वापस आता है कि बाबा गलती हो गई, इधर लटक गया था, फिर से आ गया हूं, फिर मुझे शक्ति दो। होता है ना, अपने आसपास आपने देखा होगा। अपनी गाड़ी को हम हाईवे से उतारते क्यों हैं, यदि हाईवे से आप नीचे चले गए हैं, गलत रूट पे चले गए हैं, ऐसे ऐसे रास्ते पे चले गए हैं जो रास्ता ठीक नहीं है, वापस आपको कहां आना पड़ेगा? हाईवे पे ही आना पड़ेगा। तो जब बाबा ने हमें हाईवे दे दिया है तो उतरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ना बहुत जरूरी हो जाता है, दादी जानकी जी की वो बात भी मुझे बहुत पसंद आती है, वो कहती हैं कि जब से मैं बाबा के पास आई हूं एक दिन के लिए भी ये नहीं भूली हूं कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। हम सबको भी रिवाइज करने की जरूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया, उसमें उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को देखा कि किसने अपने जीवन के लिए गोल सेट किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है। उसमें से केवल 3% ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पास एक लिखित में अपने जीवन का लक्ष्य था कि हम अपने जीवन में ये करेंगे। और लक्ष्य का भाव ये होता है विथ प्लानिंग कि एक साल में मुझे ये कर लेना है, 5 साल में मुझे ये कर लेना है, 10 साल में मुझे ये कर लेना है, यहां तक पहुंच जाना है, इसको कहते हैं लक्ष्य। तो 20 साल के बाद जब उन्होंने उन्हीं विद्यार्थियों को चेक किया जिनके पास 3% जो विद्यार्थी थे जिनके पास एक लिखित लक्ष्य था, बाकी विद्यार्थियों ने ठीक है लक्ष्य ऐसा वैसा ढुलमुल सा था, 20 साल के बाद जब चेक किया गया तो ये जो 3% विद्यार्थी थे ये संसार के टॉप के व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति। और जो जिनके पास एक लिखित लक्ष्य नहीं था वो कहीं कुछ काम कर रहे थे, कहीं कुछ काम कर रहे थे, कहीं कुछ काम कर रहे थे। तो उन्होंने इसे स्पष्ट किया कि जिनके पास एक क्लियर विजन है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, वो व्यक्ति कहीं भी नहीं भटकता, वो अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ता है। जैसे आपने धावक धाविकाओं को देखा होगा दौड़ते हुए, यदि 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर की रेस में कोई धावक धाविका दौड़ रहे हैं, आप उनको देखो कहां होती है उनकी नजर? सामने टारगेट पे। कभी आपने देखा कि वो एक दूसरे से बात करते हुए दौड़ रहे हैं कि हाँ जी आज नाश्ते में क्या किया तुमने या घर जाके तुम क्या करने वाले हो या वीकेंड में तुम्हारी क्या प्लानिंग है, ये सब बात करते हुए दौड़ते हैं क्या वो? नहीं, देखते भी नहीं कि कौन गिर रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन कहां है, नहीं, केवल सामने नजर होती है अर्जुन की तरह, तभी तो वो सफल होते हैं ना। ये होता है लक्ष्य कि अपने आप को डुबाएं, कूदें, और उसके लिए एक अपने आप को ना डेडिकेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए ना लक्ष्य जरूर, मधुबन में यदि है ना तो ये काम जरूर कीजिएगा, क्या है मेरे जीवन का ध्येय। चलो लंबा चौड़ा ना बनाना हो तो चूंकि आज नया साल है तो नए वर्ष में एक साल के लिए, मान लो एक साल भगवान ने मुझे दिया है कि बच्चे एक साल तुम्हें मैंने दिया गिफ्ट में, अब इस एक साल को तुम्हें बहुत अच्छी तरह जीना है और एक साल के बाद वापस मेरे पास आ जाना है। एक साल है तुम्हारे पास, तुम जो चाहो अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ में, पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि एक साल है चलो अब खा पी लो, घूम फिर लो, एक साल के बाद तो चलना है जी। जैसे नहीं वो विनाश की बात हुई थी कि 2012 में विनाश हो जाएगा, उससे पहले भी कई बार घटनाएं हुई हैं, तो कई लोग ऐसे कि भाई चलो विनाश तो होना है, अब सब खाओ पियो मस्त रहो, जो भी चीजें हैं बेचारे, जो भी उनके घर में मुर्गियां मुर्गे बकरे वकरे थे सबकी शामत आ गई बोले अब तुम भी रह के क्या करोगे, वैसे भी तुमको भी जाना है, उससे पहले हमारे पेट में चले जाओ तो ऐसा वाला नहीं। यदि एक साल है मेरे पास तो मुझे क्या करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बात करते हैं ना तो हम लक्ष्य के लिए स्मार्ट शब्द यूज करते हैं कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, और उसमें लास्ट जो लेटर है टी वो बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि आप टाइम बाउंड होना चाहिए, आपका गोल समयबद्ध होना चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए कि यदि एक साल मेरे पास है तो इस एक साल में मुझे क्या क्या करना है, इस पे विचार जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी अटके हुए हैं निकालना अपने आप को जहां तहां से, क्योंकि एक राजा था, आपको याद रहेगी ये बात कि कहीं अटके नहीं, एक राजा था उसकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई मेरी कोई संतान नहीं है, अब ऐसा है कि कल सुबह जो सबसे पहले मेरे पास आएगा उसे मैं इस राज्य का राजा बना दूंगा। अब जैसे ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया, सब में उमंग उत्साह आ गया, बच्चों में बूढ़ों में जवानों में, सबने सोचा कि भाई क्या बात है, ऐसा अवसर तो फिर कभी मिलेगा नहीं। बूढ़ों ने भी सोचा कि चलो हम पहले राजा के पास पहुंच जाएंगे, राजा के दर्शन कर लेंगे, भले ही 2-4 साल हमारे पास बचे हुए, राजा बन के तो मरेंगे। बच्चों ने भी सोचा हम दौड़ के पहुंच जाएंगे, युवाओं ने सोचा हम पहुंच जाएंगे। अब शर्त के साथ एक बात यह भी थी कि महल का जो मुख्य द्वार है वहां से राजा के महल तक पहुंचने के बीच में एक बहुत लंबा चौड़ा लगभग 5 किलोमीटर का लॉन है, बगीचा है, और उसमें राज्य की सारी संपदा रखी हुई होगी। आप उसमें से सब चीजें ले जा भी चाहते हैं, मतलब जो चाहे वो ले जा सकते हैं। 9 बजे गेट खुलेगा, 12 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। उस दरमियान आप चाहें तो जो भी चीज है ले जा सकते हैं, 12 के बाद नहीं ले जा सकते आप। लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि पहले राजा के पास पहुंचना है, राजा के दर्शन करने हैं, ताकि वो आपको उत्तराधिकारी घोषित कर दे। अब पूरी लाइन लगा ली लोगों ने सुबह सुबह से। अब जैसे ही, वैसे भी कहीं प्राप्ति होने वाली होती है नहीं, तो लोग कैसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, होता है ना, कितनी भीड़ भड़क्का हो जाती है। तो सब पूरी लाइन में खड़े हो गए। 9 बजे दरवाजा खोला गया। अब गिरते पड़ते लोग घुसे, अब दौड़ते दौड़ते अंदर घुस रहे हैं। अब जैसे ही अंदर गए, थोड़ा आगे गए, बहुत लंबा चौड़ा था, लगभग 5 किलोमीटर का लॉन था। एक तरफ उन्होंने देखा 56 प्रकार के व्यंजन, गुलाब जामुन, बालूशाही, हाँ, खाखरा, भाखरा, जो भी है, सब चीजें बना के गरम गरम रखी हुई है, समोसे की खुशबू आ रही है। अब बेचारे गरीब थे, गरीब मतलब प्रजा तो पहले गरीब ही हुआ करती थी ना, वो तो सूखी सुखरूखी रोटी वोटी खाने वाले होते थे। अब इतने समय से वो इंतजार कर रहे थे, सोचा कि चलो पहले कुछ खा लिया जाए, कुछ खा के फिर आगे बढ़ेंगे। अब लोग खाने पीने में टूट पड़े। अब थोड़े से लोगों ने सोचा, नहीं नहीं भाई, हमें तो आगे बढ़ना है, राजा के पास पहुंचना है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, देखा बहुत सुंदर सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, बहुत सुंदर, स्वर्ग की अप्सराओं जैसी सुंदर हैं और नृत्य कर रही हैं। अब उनको लगा कि वाह, स्वर्ग की अप्सराएं, ऐसी तो हमने कभी देखी नहीं, इतनी खूबसूरत अप्सराएं उनको देखने में लग गए। कुछ लोग और आगे बढ़े, देखा बहुत सुंदर सुंदर जो वो हैं, वस्त्र हैं, वो रखे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने टूटे फूटे जो कपड़े हैं वो छोड़े जाएं और ये नए वस्त्र धारण किए जाएं, क्योंकि कहा गया है कि जो चाहो ले जा सकते हो। लोगों ने एक धारण किया, दो धारण किया, तीन धारण किया। अच्छा, झोले वोले भी ले आए थे, उसमें से भी भरने लगे लोग। और थोड़े आगे बढ़े तो एक तरफ सोने के आभूषण, एक तरफ चांदी के, एक तरफ हीरे के, सभी रखे हुए हैं, रत्नों से भरे हुए हैं, पूरा जो मैदान है अटा पड़ा है। अब लोग उसको भरने में पहनने में मस्त हो गए। आए क्यों थे? किसी को ये याद ही नहीं रहा कि वो लोग यहां आए क्यों थे। क्योंकि जब हम लोग रथ हो जाते हैं ना कहीं पे, और ऐसी चीजों में, आप मूवी देखो, मान लो मूवी देखा करते थे ना 3 घंटे की, पता चलता था समय का, और यहां 1 घंटे योग में बिठा दिया जाए तो बार बार घड़ी की ओर नजर रही, अभी तक 4:45 नहीं है, कई 4:30 में ही पलायन कर जाते हैं, और कई नजर देख लगाते रहते कि कब ये टाइम इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है। मूवी में पता नहीं चलता था, अभी योग में पता चलता है। तो जब हम लिप्त हो जाते हैं ना कहीं, तो टाइम का पता नहीं चलता। अब इन लोगों को भी टाइम का पता नहीं चला, लगे हुए थे। एक ही केवल बुद्धिमान व्यक्ति था, युवक था, उसने सोचा कि नहीं, मुझे पहले राजा के पास पहुंचना है, राजा के दर्शन करने हैं, और यदि मैंने राजा के दर्शन कर लिए, राजा ने मुझे उत्तराधिकारी बना दिया, तो ये सारी चीजें मेरी हो जाएंगी ना, न केवल ये सारी चीजें बल्कि पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। ये उसके मन में था। वो डायरेक्ट राजा के पास पहुंचा, राजा के दर्शन किए और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और बाकी ये सब जो लगे हुए थे, मैंने कहा ना टाइम का पता नहीं चलता, जब हम कहीं लग जाते हैं तो कब 12 बजा पता ही नहीं चला। घंटी बजी, सिपाही लोग आए, जिसने 8-10 कपड़े पहन लिए थे सबके कपड़े उतार लिए कि भैया उतारो, टाइम्स अप, समय पूरा हो गया। जिसने अपनी झोलियां बोरे ओरे सब भर रखे थे आभूषणों से, वो सब उनके झोले बोरियां सब ले लिया गया और उनको वापस भेज दिया गया, जैसे आए थे वैसे ही भेज दिया गया। भाव क्या है इसका? केवल 8, विचार कीजिएगा, मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूं, केवल 108 डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचते हैं, और कहीं भी उलझते नहीं, और कहीं अटकते नहीं। क्योंकि संसार में हमारे आसपास बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें अटका लेती हैं, फंसा लेती हैं, हमारी बुद्धि योग को उलझाने वाली बहुत चीजें हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है ना, वो अपनी बुद्धि को कहीं भी अटकने नहीं देते, एकाग्र रहते हैं। क्यों आया हूं मैं बाबा के पास, बनना क्या है मुझे, संगम युग में मुझे क्या करना है, और यदि अभी मैं एकाग्र रहा एक पे, यदि अभी मैंने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाया, यदि अभी मैंने संसार की ओर से अपने कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, तभी मैं इस गोल को प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है, तुम्हारी संपन्न और संपूर्ण बनने में तुम्हारा देखना और तुम्हारा सुनना, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या देखते हो तुम और क्या सुनते हो? यदि हम वही देख रहे हैं जो देखते आए हैं, वही सुन रहे हैं जो सुनते आए हैं, तो शायद संपूर्णता हमसे दूर होती जाएगी। इसीलिए लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस्ड, मैं समझता हूं कि लक्ष्य के लिए एक ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, एक ऐसी तड़पन होनी चाहिए, जैसे मरुस्थल में कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसके चित्त में, उसके जेहन में केवल एक ही बात होगी, पानी पानी और पानी, और कुछ नहीं चाहिए उसे, केवल पानी चाहिए। ऐसे ही मेरे चित्त में केवल मेरा गोल, मेरा ध्येय कि अब मुझे ये करना है। यदि एक साल में, इस एक साल में एक चैलेंज मैं ले लूं कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, तो क्या कोई रोक सकता है मुझे? रोक सकता है? रोक सकता है? नहीं। रोकता है केवल स्वयं का विचार, रोकती है केवल खुद की, मेरी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मेरे संस्कार हैं, वो अरे कौन बना है, तुम भी क्या बन जाओगे, यही विचार आते हैं ना। लेकिन डेडिकेट कर दें यदि पूरे इस एक साल के लिए अपने आप को कि नहीं, ये करना ही है। ठीक है, हम जानते हैं ज्ञान की दृष्टि से कि एक साल एक कम समय है, लेकिन फिर भी जो उन्नति इस एक साल में मेरी हो जाएगी ना, वो 10 साल के बराबर हो जाएगी यदि मैं झोंक दूं अपने आप को पूरी तरह से। जैसे एक महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचा था, उसने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। महात्मा जी उसको नदी के किनारे ले गए, उसका गर्दन पकड़ा और पानी में डाल दिया, फिर बाहर निकाला, फिर डाल दिया, फिर बाहर निकाला, फिर डाल दिया। जैसे तैसे वो युवक अपने आप को छुड़ाया और भागने लगा। महात्मा जी ने कहा, रुको रुको, भगवान से नहीं मिलना है क्या? तो उसने कहा, भगवान, मैं तो जीते जी भगवान से मिलना चाहता था, अब तो मुझे मार के भगवान के पास पहुंचाना चाहते हैं, अभी तो मुझे जिंदा रहना है। महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने जो किया ना, उसके पीछे एक मर्म है। जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डुबा दिया था तो तुम्हारे मन में क्या विचार था? उसने कहा कि मेरे मन में केवल एक ही विचार था कि कैसे मुझे ऑक्सीजन मिले, कैसे मुझे हवा मिले, कैसे प्राणवायु मिले, बस एक ही विचार। क्या ये विचार आया कि मेरे घर में कितने सदस्य हैं, कौन क्या कर रहा होगा, मुझे आज फिल्म देखने जाना है, या मुझे अगले साल बाजार जाना, या ये करना, वो, ये सब विचार आया? बोले नहीं, बस एक ही विचार, कैसे ऑक्सीजन मिले। उन्होंने कहा, बस यही एक विचार यदि तुम्हारे अंदर रहे कि मुझे भगवान को पाना है, तो संसार का कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं रोक सकता। वैसे ही यदि मैं ये ठान लूं कि मुझे वो अचीव करना है, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। वो भी चाहते हैं कि हम बाप समान बने, वो भी चाहते हैं कि हम संपन्न संपूर्ण बने, और यदि मेरी चाहना भी उनकी चाहना के साथ मिल जाए तो कोई मनुष्य मुझे नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी गिफ्ट बाबा को होगी हमारे तरफ से, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे इस ब्राह्मण जीवन की होगी यदि हम अपने इस वर्ष को इस रूप में मनाए तो। इसलिए ऐसा एक गोल, एक ऐसा ध्येय अवश्य बनाइएगा। और चौथी बात, एक धारणा विशेष जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको इसमें मदद करेगी अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करने में, वो ये दादी के ही जीवन का है। कोई और धारणा भी हो सकती है, जो मेरे विचार में था वो ये, जो दादी हम सबको दे के गई हैं, निमित्त, निर्मल और निर्माण। उसमें से भी निमित्त भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। करण करावन हार बाबा करा रहे हैं, और वो मेरे द्वारा कराएंगे। यदि मेरा दिल सच्चा है, साफ है, और मैं सच्चे दिल से कुछ करना चाहता हूं, सौंप दो अपने आप को, निमित्त बन जाओ, वो कराएंगे। क्योंकि अनुभव ये कहता है कि सचमुच कराने वाले वो हैं। अभी यूथ की मीटिंग थी नीचे 3 मास पहले, शिवानी बहन जी आई हुई थी, वो भी अपना अनुभव शेयर कर रही थी। कहती है, मैं तो टीवी के सामने जाना ही नहीं चाहती थी, बैठना ही नहीं चाहती थी, जबरदस्ती मुझे बिठाया गया, और अनुभव ये हुआ कि बाबा फिर करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं। कहा, 1% भी जो चीज उसमें है, जो दी जा रही है, जो संसार आज एप्रिसिएट कर रहा है, मेरी महिमा करता है, तो मैं तुरंत उसे फॉरवर्ड करती हूं ऊपर, क्योंकि उसमें 1% चीज भी मेरी नहीं है, क्योंकि जो चीज मैं खुद सुनाती हूं बाद में खुद सुन के नोट्स बनाती हूं कि आज क्या सुनाया। यह है निमित्त भाव। और जब ऐसा निमित्त भाव आता है तब सचमुच बाबा हमें यूज करते हैं। इस चीज को हम करके देखें, क्योंकि मुझे करना है ये भारी कर देता है। बाबा को कराने देना, बाबा को कराने दे, क्योंकि सचमुच वो हमारे द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा कराएंगे, हमारा पुरुषार्थ भी बेस्ट कराएंगे, हमसे सेवाएं भी बेस्ट कराएंगे और हम में भारीपन भी नहीं रहेगा। एक अनुभव से मैं लास्ट में करना चाहूंगा, समय पूरा हो रहा है। कैसे करण करावनहार हमारे द्वारा कराते हैं, या ये जो मैं और मेरापन है इसे देना कितना जरूरी है। शुरुआत में जब हम लोग समर्पित हुए थे, मैं भट्टी के लिए यहाँ ज्ञान सरोवर आया था, पांडव भवन में था पहले, तो वहां शीघ्र वक्तव्य प्रतियोगिताएं रखी जाती थी। अब जब मैं यहां था तब सूर्य भाई जी ने मेरा नाम उसमें दे दिया था शीघ्र वक्तव्य प्रतियोगिता में। अब जब मैं वहां पहुंचा, अब उन्होंने कहा कि तुम्हें भी भाग लेना है, तो मैं भाग नहीं लिया लेकिन भाग लिया वहां से। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भाग नहीं लेना है भैया, क्योंकि वहां पूरे हॉल में बड़ी दादी होती थी, शांतामणि दादी होती थी, मनोहर दादी होती थी, सारे बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहने होते थे, इवन वो सब भी पार्टिसिपेट करते थे। अब मुझे जस्ट हुए थे 1.5 साल हुए आए हुए, अब इन सबके सामने, एज भी बिल्कुल छोटी सी थी, मैं कैसे उनके सामने बोलूं। मैं भाग गया। अब भाग गया तो वहां बिल्कुल नक्की लेक की ओर, जो बाबा की पहाड़ी है, उधर तेजी से जा रहा था। जब मैं जा रहा था तो अचानक एक तेज संकल्प ऊपर से बाबा की ओर से आया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलते हो, अब तुम समर्पित हो गए ना, तुमने अपना तन समर्पित कर दिया ना, तो क्या अपना मुख समर्पित नहीं किया है। समर्पणता का मतलब तो यही है ना कि संपूर्ण समर्पण। तन समर्पित किया मतलब क्या, मुख समर्पित नहीं किया है। ये थॉट इतना प्रबल था कि मैं आगे भाग रहा था। अब आप जानते हैं जब मन विचलन में होता है आप भागते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, भाग रहा था लेकिन ठिठक गया मैं। और दूसरी बात ये, अच्छा तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम्हें डर लग रहा है तो ओके तुम ऐसा करो, तुम ऊपर आके बैठ जाओ मेरी जगह, मैं नीचे आके बैठ जाता हूं तुम्हारी जगह, मैं बोलूंगा। अब ये इतना प्रबल था ये विचार कि सचमुच मेरे कदम आगे नहीं बढ़े, अब मैं पीछे मुड़ा वापस आया और पक्का कराते आ रहा था आपको बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा आपको बोलना है, आपने वायदा किया है आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलना। बाबा कमरे में आके बैठा, फिर से उनको पक्का करा रहा हूं कि आपको बोलना है, आपने बोला है, मैं ऊपर जाता हूं आप बोलो। अब उस वीक स्पीच में, उस शीघ्र वक्तव्य में 18 लोग थे, सभी बड़े बड़े थे मधुबन के, लेकिन जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें फर्स्ट मैं था। क्यों था, मैंने क्या बोला वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाव मैं ये सुना रहा हूं, ये जो निमित्त भाव है ना कि करण करावनहार वो है, हमें उसे कराने देना चाहिए कि वो कराए। इस भाव को हम इस वर्ष में अवश्य धारण करें कि बाबा इस वर्ष में आप जैसा मुझे तराशना चाहें, जैसा बनाना चाहें आप बनाएं, मैं बस निमित्त हूं, आपको मैं अर्पित हूं। तो सचमुच ये वर्ष आपके लिए बहुत यादगार हो जाएगा, बहुत ही आनंददायी हो जाएगा। और ये एक साल, बाबा ने कभी कहा है एक दिन में एक वर्ष की तपस्या करो, वैसे इस एक साल में कम से कम हम 10 साल का पुरुषार्थ अवश्य कर लें। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं और नए साल की पुनः आपको बहुत सारी बधाई है। ओम शांति।